Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Shri Radha Pavan Bihari Lal ki, Pavan Sarovar Dham ki, Nandagam ki. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आप एक बहुत सुंदर पवित्र स्थान में आए हैं, इसमें कोई संदेह है आपको?
नहीं,
ना सुंदर स्थान कहीं भी नहीं मिलेगा आपको दुनिया में, सारे स्थान ऐसे ही हैं। रूप गोस्वामी कहते थे कि ब्रज में 600 करोड़ पवित्र स्थान है, इतने लीला स्थलीय हैं, भगवान ने लीला किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश सब स्थान लुप्त होते जाते हैं और बिल्डिंग बनती है रहने की फ्लैट वाली। तो कुछ कुछ स्थान हमें पता है, शास्त्र में दिया है, हम बोल सकते हैं, बाकी सो हरे कृष्णा। तो एक बार नंद बाबा तय करते हैं कि हमको त्रिवेणी में स्नान करना है। त्रिवेणी क्या होता है? गंगा जमुना सरस्वती। तो मैया जो है वो मटरी बनाती है, सूखा प्रसाद। तो लाला जी पूछते हैं कि ये क्या बन रहा है? बोले तो मटरी बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि अभी पिताजी सब लोगों को लेकर तो आवाज कम कर सकते हैं उसकी। पिताजी कहते हैं, माताजी कहते हैं कि पिताजी ब्रजवासियों को लेकर अभी त्रिवेणी जा रहे हैं स्नान करने के लिए, इसलिए रास्ते में सूखा प्रसाद बन रहा है। तो कह रहे त्रिवेणी में क्यों जा रहे हैं? तो वहां पर स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। तो लाला को ये आइडिया अच्छी नहीं लगी, तो बाबा से मिलने गए। बाबा अब आज मत जाना, आप कल जाना। क्यों? कल क्या है? कल तो अक्षय तृतीया है, हमारे धर्म के अच्छे अच्छे मुहूर्त के अनुसार एक पूरा दिन का अच्छा मुहूर्त है वो। आप कल निकलेंगे तो आपका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा, अच्छी बात है, क्योंकि नुकसान तो नहीं, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। तो वो दिन रात को नंदगांव में रुके, उस दिन तो जाना था उनको, लेकिन उस दिन रात को ही उधर ही रुक गए। और ये जो है ना, ये पूरा उनका खुद का सरोवर है, कई सरोवर है, नंद बैठक में भी सरोवर है उनका, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर नंद सरोवर नाम से जानते थे इसको, तो यहाँ पर रोज़ वो स्नान करते थे। तो फिर जिस दिन रुके रात को, तो अक्षय तृतीया के दिन सवेरे भी स्नान करने को आए और उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा, क्योंकि वो बड़े सवेरे अंधेरे में आते थे, 8 बजे नहीं आते थे, अर्ली मॉर्निंग यूज टू कम व्हेन इट यूज टू बी डार्क एवरी डे। लेकिन उस दिन जब आए तो बहुत प्रकाश दिखाई पड़ा उनको इधर, तो बड़ा आश्चर्य हुआ इधर, अरे इतनी रात गए इधर, यहाँ पर इतना प्रकाश कैसे। तो देखते हैं तो एक उधर कोने में एक बहुत लंबा चौड़ा राजा, एकदम बड़े शरीर वाला, राजवस्त्र पहना हुआ उसका ऊपर, और 2 फुट का मुकुट उसके ऊपर, सर के ऊपर अलंकार, राजवस्त्र सब पहना हुआ है, उसके शरीर से तेज निकल रहा है और वो इसमें स्नान कर रहा है। स्नान कर रहा तो ठीक है, कोई अद्भुत बात नहीं उसके अंदर, अद्भुत याद ये है कि स्नान करके फिर इसके बाहर जो जमीन है उसके ऊपर जो मट्टी है उसमें वो लोटपोट हो रहा है, अपने आप को लोटपोट करके फिर नदी में, फिर पानी में प्रवेश कर रहा है, फिर बाहर आ रहा है और फिर मट्टी में लोटपोट होके अपने आप को मट्टी में लिपके फिर वापस स्नान कर रहा है। ये कुछ जरा सा अद्भुत बात थी। ये बोलते हैं अरे ये कौन महाराज है, कभी आए नहीं आज तक, मैं तो राजा हूँ सबको जानता हूँ लेकिन ये तो कोई नई व्यक्ति है। तो वो आएगी, महाराज जी आप कौन हो? तो कहते हम प्रयागराज हैं, हम स्वयं त्रिवेणी संगम हैं। तुरंत दंडवत प्रणाम किया उनको, जिनके पास जाना था वो तो हमारे दरवाजे पे आ गए, प्रणाम किया उनको बहुत, जिस जो आदर से जा रहे थे वहाँ पर, तो वो सामने आने से भी कितना आपको अच्छा लगेगा, बहुत दिल से प्रणाम किया उनको और कहा महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई मुझे कि आप ये ऐसे क्यों कर रहे हो, लोटपोट होकर फिर पानी में फिर। वो कहते हैं कि ये जल आपके सरोवर का और ये रज, इसमें इतनी शक्ति है कि साल भर में हमारे जल में जो स्नान कर कर अपना पाप छोड़ते हैं वो इस रज के स्पर्श से और जल के स्पर्श से सब धुल जाता है, हम निस्तेज हो जाते हैं उसके उसके पाप के प्रभाव से, और यहाँ पर आकर इस रज के स्पर्श से और इस जल के स्पर्श से हम पूरे तेज को प्राप्त करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं साल भर की सेवा करने के लिए, सब लोग आकर स्नान करते हैं और पाप छोड़ के चले जाते हैं। बड़ा आश्चर्य हो गया उधर ही, मन में टिकट कैंसिल कर दिया उन्होंने, क्यों जाना है, जिनके पास जाना है वो स्वयं मेरे पास आते हैं, ये पता नहीं था मुझे। तो अपने पिताजी को अपने ही सरोवर के गौरव को समझाने के लिए भगवान ने लीला किया। तो यहाँ पर रुके नहीं वो, फिर देखते हैं उधर देखते हैं, अरे अच्छा वो तो बहुत सारी सुंदर सुंदर युवतियाँ स्नान कर रही है, अच्छा यहाँ से घूम के ऐसे घूम के फिर उधर आए, वो तो एक नहीं थे वो बहुत सारे थे, वो भी वही कर रहे थे, नदी में जल में स्नान और रज में लोटपोट फिर नदी पानी में स्नान। तो पूछा देवी हूँ आप कौन हो? तो कहते मैं गंगा देवी हूँ, मैं जमुना हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं नर्मदा हूँ, कावेरी, सरयू, सिंधु, भीमा, इंद्रायणी, बहुत नाम लिए उन्होंने और सब लोग स्नान कर रहे हैं। बोले साल भर हमारे जल में सब पापी लोग आके स्नान करते हैं, पाप छोड़ते हैं, हम निस्तेज हो जाते हैं, फिर एक दिन छुट्टी लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन और सब लोग हम लोग यहाँ पर यहाँ स्नान करते हैं, रज से स्नान करते हैं, जल से स्नान करते हैं, फिर अपनी सेवा देने के लिए चले जाते हैं। उस दिन से इसका नाम पड़ा पावन सरोवर, सबको पावन करने वाला। हाँ, जो लोगों को पावन करता है उसको भी पावन करता है, जैसे एक होता है विद्यार्थी, एक होता है अध्यापक और एक होता है अध्यापकों का अध्यापक, जो अध्यापकों को अध्यापन करने के लिए सिखाता है, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स बोलते हैं उसको, TTC। तो वैसे एक होता है पवित्र, एक होता है अपवित्र वस्तु, दूसरा होता है पावन करने वाला वस्तु और तीसरा होता है पावन करने वालों को पावन करने वाला वस्तु। तो वैसे ये पावन सरोवर है, सभी पावन करने वालों को पावन करने वाला है, इसलिए सब मटरी जो थी उन्होंने घर पे ही खा ली नाश्ते में, सफर तो था ही नहीं, सफर हुआ ही नहीं, इसलिए वो उधर ही रह गई, उधर ही खा लिया गया उसको। तो ऐसा ही सुंदर पावन सरोवर है। इसमें ना देखिए वहां पर एक कुआं है, देखा आपने, वो जो हिस्सा है ना पूरा, उसको यशोदा घाट कहते हैं। वो पावन सरोवर जो नंद महाराज का सरोवर है, उसमें रानी का भी अपना कुछ हिस्सा है प्राइवेट, वहां पर आकर वो स्नान करती है। बहुत सारे यशोदा कुंड है इधर उधर, तो जब मर्जी है तो यहाँ पर भी आते, तो ये उनका हिस्सा है खुद का प्राइवेट एरिया। उसमें उन्होंने कुआं बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि जब ही दुर्वासा मुनि के तरफ से राधा रानी को वरदान मिला, किसी को पता है क्या वरदान मिला? वो राधा रानी ऐसा है ना, वो मट्टी मट्टी से खेल खेल रही थी, कहाँ गई माँ प्रभु जी हमारे, तो मट्टी मट्टी से खेल खेल रहे थे, मट्टी का खाना बन रहा था, चावल दाल सब्जी मिठाई मिठाई सब बन रही थी। तो उतने में दुर्वासा मुनि आए, और दुर्वासा मुनि को सखियों ने कहा आइए 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 महाराज जी आइए आइए, इतनी बढ़िया खाना बन रहा है, आप भोजन कर लो। तो महाराज जी देख रहे हैं कि सब मट्टी मट्टी का खेल चल रहा है, और वो सखियाँ बुला रही है, तो बड़ा गुस्सा करते हो, क्या समझते हो अपने आपको, मुझे मट्टी खिलाओगे, जला कर बस पकड़ दूंगा। तुमसे डर गई, वो इतनी सिंपल सी लड़की है, वो बहुत इतने, वो तो बड़े प्रेम से बुला रही थी, बहुत निष्पाप, भाग के राधा रानी के पास, अरे वो बाबा आ रहे हैं, वो जलाने की बात कर रहे हैं। तो बाबा फिर आए पास में, राधा रानी फिर वो रसोई बना रहे थे मट्टी की, तो राधा रानी बड़े प्रेम से मधुर भाषा से बोलती है, अरे बाबा क्यों भस्म भस्म कराने की बातें कर रहे हो, थोड़ी सी खीर खाने में इतराज ही क्या है, चखने में क्या प्रॉब्लम है, आप चख तो सकते हो ना, इतना थोड़ी सी बात पर भस्म भस्म करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा मोहित हो गए उनकी बात सुनकर, उतने में सखी ने आके हाथ में पकड़ा दिया प्लेट, ये लीजिए खीर। तो वो खाने लगे, पता नहीं कौन से भाव में वश हो गए, वो खाने लगे, वो खा रहे मट्टी, लेकिन आनंद आ रहा है उनको, बहुत दिव्य खीर खाने का आनंद आ रहा है, और पेट में इतना खुशी हो रही है उनको, खाते जा रहे हैं खाते जा रहे, सब देखते रहे, सखिया अभी तो भस्म करने की बात कर रहे थे, अभी तो खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। राधा रानी भी बड़ी मुस्कुराती हुई देख रही है उनको, फिर दुर्वासा मुनि संतुष्ट हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कन्या को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इसके हाथ से जो भी बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट बनेगा, और जो भी उसको खाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा, और जो भी उसको खाएगा वो हमेशा विजयी रहेगा। तो सारे ब्रज में खबर फैल जाती है, एक तो दुर्वासा मुनि को वश में कर दिया, ऊपर से दुर्वासा मुनि से इतने वरदान ले लिए, हाँ गए थे बोल रहे थे भस्म बनाने की बात कर रहे थे, और आकर वरदान दे के आ गए, है ना, तो सब ब्रज में खबर फैल गई, नंदगांव तक पहुंच गई, यशोदा मैया तक पहुंच गई। यशोदा मैया ने कहा मेरे लाला के लिए कि मेरे को ऐसी बहू चाहिए, इससे बढ़िया कोई बहू नहीं हो सकती, लेकिन तुरंत कैसे बहू बना देंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना योजना, तो फिर पहले तो उसको भोजन करने के लिए बनाएंगे, सबसे पहले बुलाएंगे, बाद में फिर धीरे धीरे बात करेंगे। तो एक बड़ा उत्सव होता है भानुगढ़ में, उस उत्सव में वो बहाना बनाकर मौका देकर बात करती है कि क्या तुम्हारी लाली हमारे लाला के लिए भोजन बनाने के लिए आ सकती है क्या नंदगांव में, तुरंत हाँ बोल देती। उस दिन से राधा रानी सखियों के साथ में नंदगांव आना शुरू कर देती है। तब यशोदा रानी मीठे पानी का कुआं बना देती है, यहाँ पर रसोई राधा रानी बनाती है कृष्ण भगवान के लिए। अभी तो आपको खुला जगह लग रहा है, उस समय तो बड़ा महल मणि कंचन से बना हुआ महल हुआ करता था। तो इधर ये कुआं यशोदा कुआं है, इसके मीठे जल से राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए भोजन बना देती है। कई लीलाएं हैं उनकी उसमें, हरे कृष्णा। फिर उसी लक्कर लीला जो है वो रोज उनको देखती थी, कितनी कुशल है वो, इतनी सी कन्या है, इतनी सारी सहेलियों को एक साथ में कई चूल्हों पर लगा देती है, कितना बढ़िया नियंत्रण करती है, इससे हर एक का मेजरमेंट उसके हाथ में है, और कितना स्वादिष्ट प्रसाद बनता है, कितनी कन्या खुश रहते हैं हमारे। तो एक दिन दो दिन चार महीने पाँच महीने बहुत दिन हो जाते हैं, तो रोज देख देख के आसक्ति बढ़ती है। एक दिन ऐसे गले लगाती है उसको, प्रेम से आंसू बहाती है उसके सर पर, और तुरंत हल्दी लगा देती है उसके हाथ में। तो फिर वो बहुत संकोच होता है उसको, बहुत शर्माती है बेचारी, लेकिन मन में बहुत खुश हो जाती है, घर चले जाती है। तो घर चले जाने के बाद में क्या होता है, यहाँ से घर के रास्ते तक बरसाने की सीमा तक बहुत खुश थी वो, आज तो इतना आनंद हुआ, मैया ने इतना प्रेम दिया मुझे, अपने बहू के रूप में स्वीकार किया मुझे, मतलब निश्चय हुआ। लेकिन घर पहुँचे तो मतलब नीचे पहुँचे तो याद आई, अरे बाप रे, मैया को तो बोला ही नहीं कुछ, बिना बोले सगाई करके आ रही हूँ, क्या कहेगी मैया, ये संस्कार है तुम्हारे, कहीं घूमने जाना और बहू बन के आना लौट के। आजकल में होता है ये कॉलेज में वगैरह, कॉलेज जाते हैं फिर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से घर आते हैं, बोलते मैया हो गया हमारा अभी, आप टेंशन मत लो। तभी उस ऐसा रिवाज नहीं था, तो बोलते यही संस्कार है क्या, ऐसा सोच रहे मन में, कैसा डांटेगी मैया मुझे, तो रोती है बहुत। फिर ललिता को कहते, ललिता क्या करूँ, गड़बड़ हो गया अभी, तो कहती ये उधर एक कुंड है, उधर एक कुंड है, उसका नाम है प्रिया कुंड, वो ब्रजभानु बाबा का कुंड है, वही अपना पिताजी का कुंड है, इधर हाथ धो लो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अच्छी तरह हाथ धो लेना आप। तो सब सखियाँ इस बात पर राजी हो जाती है, और सब मिलकर राधा रानी का हाथ धोती है, दोनों पूरा साफ कर देती है पूरा, कोई चिंद नहीं, हल्दी वल्दी कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बोले जाओ अभी हम किसी को नहीं बोलेंगे, सब अपने घर चले जाते हैं, राधा रानी अपने घर चली जाती है। तो क्या होता है, सवेरे अपना अपना नित्य कर्म करने के लोग कुंड पे आ जाते हैं, कोई अपना भैंस धोने के लिए, कोई गाय धोने के लिए, कोई कपड़ा धोने के लिए, कोई स्नान करने के लिए, देखते अरे पूरा पीला हो गया है कुंड, ये कल तो अच्छा था पानी, आज पूरा पीला हो गया है। तो ब्रजवासी लोगों को तो पता नहीं कुछ क्या हुआ है, लेकिन तो होते तो बड़े चतुर हैं वो रोज दिन भर क्या सोचते रहते हैं, राधा और कृष्ण को कैसे आनंद मिला जाए, उनके मन में एक ही विचार था कि राधा कृष्ण का विवाह हो जाए तो कितना बढ़िया होगा। तो वो मन ही मन में बैठकर, एक साथ में बैठकर चर्चा करने लगते हैं, हाँ रोज वो तो जाती है नंदगांव में, रोज का रोज मैया को प्रेम लगता होगा उससे, आज शायद उसको प्रेम बहुत ज़्यादा हो गया होगा, हृदय में भाव विभोर हो गई होगी, वे श्री जी को गले लगा लिया होगा, और गले लगा कर हाथों में हल्दी लगा दिया होगा, बड़ी खुश हो गई होगी वो, शर्मा कर यहाँ पर आए होगा तो संकोच हो गया होगा उसको, फिर सखियों की सलाह के मारे हाथ धो दिया होगा उसने और पानी पीला हो गया होगा। समझ में आया कुछ आपको, ये सारे कल्पना के फूल थे अलग अलग, उसको फिर उन्होंने एक अच्छा माला बनाया उसका, और कल्पना के फूलों को सत्य का रूप दे दिया, कि मतलब ऐसा हो गया होगा नहीं, ऐसा ही हुआ है, ऐसे मानकर गए ऊपर मैया के पास, बोले अरे हमने तो सुना है कि आपने आपकी लाली की सगाई कर दी। तुम आश्चर्य हो गया उनको, समझो अभी आपके पास अपने आप माँ है ना, कोई आके बोलेगा कि अरे योगेश की तो शादी हो गई, क्या बात कर रहे हो, कभी किधर क्या हो गया, अरे मैं देखा उधर बड़े धूमधाम से माला पहन कर नाच रहे सब लोग, हमको तो पता ही नहीं, कितना आश्चर्य लगेगा आपको, अरे बेटे ने बताया बिना शादी भी कर दी, वो भी मना रहा है, ऑलरेडी लोग खाना खा रहे हैं उधर, हम लोग घर में क्या कर रहे हैं इधर। ऐसे अगर कोई गांव वाले, पूरा गांव के गांव आ गया घर पे, बोलेगा कि आपकी लड़के की सगाई हो गई, तो कितना आश्चर्य हो गया उनको, बहुत ठोले ले, लाली को बुला लो, ये क्या बात है, बुला लो उसको, बताओ बताओ लाली क्या हुआ, क्या कह रहे गाँव वाले लोग। लाली क्या बोलती है, सर नीचे करके संकोच में खड़ी है, बोलो बोलो बोलो, तो फिर वो कम से कम शब्दों में पूरी कहानी बोल देती है। अभी तो लंबी कहानी कहने का मतलब है ना, कि कैसे गले लगाया, कैसे भाव से मुझे प्रेम से नहलाया, ऐसा सब तो डंडे पड़ेंगे ना ऐसा सुनने से। तो फिर मैया बड़ी खुश हो गई, उसको जो लग रहा था कि दुखी होगी और गुस्सा करेंगे, तो बड़ी खुश हो गई वो, तो उसने कहा कि नंदगांव वालों ने हमारे बेटे को स्वीकार कर लिया, कितनी खुशी की बात है, तो हम लोग उसके उपलक्ष में कुछ भेंट देनी चाहिए, कि आपने जो भी कुछ किया हमारे लिए मंजूर है। तो नंद बाबा सॉरी ऋषभानु बाबा जो थे ना, वो बहुत अमीर थे, नंद बाबा से भी बहुत ज़्यादा अमीर थे, क्यों बताइए,
नहीं, श्री जी उनकी कन्या है बेटा, श्री जी सारे ऐश्वर्य का स्रोत जो है उसकी बेटी है।
भानु ना?
हाँ भानु तो है ही, भानु बने क्यों, क्योंकि राधा रानी आई इसलिए तो भानुपद को कीमत हुआ। एक बात बता दो आपको मैं, तो श्री जी का जन्म हुआ ना, तो इन्होंने ना ऐसे कहते हैं कि श्री जी के जन्म जब हुआ था राधा रानी का, तो पूरे ब्रज में जितने भी कंगाल फकीर लोग थे जिनको खाने को दो दाने भी नहीं मिलते थे, उनके घर में हलवा पूड़ी पैदा हो गया, अपने आप ही भंडार भर गए उनके। हाँ भूखो राम हनी धनी राम है गो फिर वो सब लोग आए उनके बधाई में जन्म के, तो वृषभानु बाबा ने एक भंडार खोल दिया मोतियों का, सबको मोती दान दे दिया, तो ऐसा भर भर के सब मोती लेके जा रहे हैं सब लोग। उतने पता चला कि अभी हीरो का भंडार खोल दिया, ए मोती को फेंक दिया उधर ही और गए, हीरा बट रहा है अभी, हीरा बटने के लिए गए। हाँ तो हीरे के लाइन में सब लोग दक्षिणा दे रहे हीरा के, और हीरा जमा कर रहे, हीरा लो हीरा लो हीरा लो, जा रहे, अरे कितना बढ़िया हीरा देखो क्या सुंदर है पता, अरे अभी पाचू का दुकान खोल दिया है, तो वो फेंक दिया हीरा उधर, और पाचू का मतलब होता ना एमराल्ड्स, उसको लेने का जगह ऐसे सारे भंडार खोल दिए, सारे बटवा दिए, तो सारे ब्रजभूमि में हर जगह पर गिरे हुए हैं रत्न मंडप ऐसे पूरे, इतना है वैभव, और भंडार में कुछ कमी नहीं हुआ। फिर भी राधा रानी का जन्म का किस्सा है ये, केवल आने मात्र से ब्रज में कण कण में रत्न और मोती और सब बिखरे गए थे, कोई उठा नहीं रहा है उसको, इतना ऐश्वर्य रानी ने, राधा रानी ने प्रकट किया। एक झलक दी आपको मैंने कि राधा रानी का मतलब क्या होता है। तो वृषभानु महाराज बड़े धनी थे, तो उन्होंने क्या किया, एक मोतियों का भंडार खोला, और एक ऐसा नहीं कि एक डब्बा में भर के दे दिया उनको, एक बैलगाड़ी भर के, हाँ एक लक्ष मोतियों की मालाएं बैलगाड़ी भर के भेज दिया उनको। मतलब स्टाइल है अपना गिफ्ट देने का, ऐसा नहीं कि एक शर्ट पीस दे दिया, एक ब्लाउज पीस यशोदा को, एक धोती नंद बाबा को दे दिया, लो भाई थैंक यू वेरी मच, ऐसा नहीं है, मोतियों का गाड़ा भेज दिया पूरा, साथ में ब्राह्मण बकायदा संदेश लेके, लिफाफा लेके, और बाद में गाड़ी बांध। अच्छा उधर क्या हो गया, उधर वो होश में आ गए, भाव में थे ना, भाव में लेकर गले लगाया, चंद हल्दी लगाया, सगाई किया, वाग निश्चय हुआ, सब कुछ हुआ, आनंद हुआ बहुत बहुत, अश्रु बहाए प्रेम के, विदा कर दिया उसको। उसके बाद में धीरे धीरे इनका प्लेन लैंड हो गया जमीन में। अरे बाप रे क्या किया हमने, क्या किया हमने, क्या दीदी कहेगी, कीर्ति दीदी क्या कहेगी, नंदगांव के यही संस्कार है क्या, किसी की लड़की को प्रेम से बुलाना पहले विनती करके और हाथ पीले करके भेजना, ऐसे कहेगी कि हम, हमारे लिए कितना बुरा भला सोचेगी वो कितने बड़े संस्कारी लोग हैं वो, श्री जी उनकी बेटी देखो कितना संस्कार की मूर्ति है वो, किसी शालीन और कुलीन है उसका व्यवहार, क्या सोचेंगे वो। पति को बोल रही है कि मैंने गलती कर दिया, तो बोले तू बहुत गड़बड़ा गड़बड़ कर दिया आज, तो रोने लगे वो संकोच में। उतने में देखते क्या है, वो नंदगांव की ओर बरसाने का गाड़ा आ रहा है मोतियों से भरा हुआ। क्या मतलब होगा, क्या कारण होगा अभी, क्या अभी नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। उतने ब्राह्मण आता है, बड़े अदब से सम्मान से प्रणाम करता है और कहता है कि हमारा राजा ने आपके लिए भेंट भेजा है। तब उनका जान जो है बच गए, उन्होंने हमारा गलती से किया हुआ कार्य स्वीकार कर लिया है, तो हमको भी कोई कुछ भेजना चाहिए। देखते हैं मोती, एक एक मोली माला निकाल के देखते हैं, इतने ऊंचे दर्जे की माला मोती है वो, 100,000 मालाएं हैं उसके अंदर। तो हमारे पास तो इतने कीमती इसके बराबर है कि कुछ ज्वेल्थ नहीं है हम दे सकते उनको, क्या करें, चर्चा कर रहे हैं। उतने में कन्हैया जी आते हैं, मतलब भैया क्या बात है, बोले सोच रहे क्या करें अभी, इसका क्या जवाब दें उनको। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, यही मोती अच्छे लगते ना आपको, मतलब इससे अच्छे मोती आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं हम उनको खेत में बो देते हैं और मैं खेती करूँगा खुद, बढ़िया से बढ़िया मोती निकालूंगा। तो माता पिता टेंशन में थे, फिर भी जोर से करे ऐसे, अरे बेटा धान की खेती होती है, मोतियों की नहीं होती है, मोती तो समुद्र के नीचे वो छिपले के अंदर आता है।
आपको क्या बच्चे हो आप, पता नहीं आपको सब? नहीं बाबा आप, मैं बता रहा हूँ आपको, यकीन रखो मैं आपको मोती खेती करके दे दूंगा, फिर भी नहीं मानते हो। तो ये क्या करते हैं, 100 मोतियों की माला चुरा लेते हैं उसमें से। नेक्स्ट डे मैया देखते, अरे इसमें तो बहुत बड़ा अमाउंट गायब है, कहाँ गया? तो बाबा बोलते हैं, अरे अपने घर पे ही चोर बैठा है, उसको कहाँ ढूंढते हो, अपने पकड़ के पूछो उसको कहाँ गया। तो बोले मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने लिया है उसको, और वो अपने घर में जो पीछे जो आंगन है ना उसमें मैंने उसको बोया है। बाप रे, ये भी कोई बात हुई। हाँ, जमीन के अंदर बोके बोलते हैं, मैंने उसको जमीन के अंदर दिया, फिर ब्रजरज दिया उसके ऊपर, फिर गाय का दूध दिया उसके ऊपर। अभी उससे भी बढ़िया मोती आएंगे, जितना बड़े मोती थे उससे भी गाय का दूध पीकर और बड़े मोती आएंगे। तो इतना मतलब ना, हंस भी रहे हैं, सर को भी हाथ लगा रहे हैं कि भाई क्या करे क्या इस बालक को। हाँ, 100,000 मणियों की माला से 100 मोतिया माला गायब कर दी इसने। अभी अभी क्या जमीन से मिलेगा वापस वो, और कोई खोद के भी निकालेगा, अरे लाओ ना मोती लाओ, 100 मोती के चाहिए वापस। कितनी घटिया बात है ये। ठीक है चलो, छोड़ दिया उसको। अगले दिन आया वापस, बाबा बाबा चलो चलो, खेत में मोती भर गए पूरे। तो जोर से हंसे, बोले कि हमने वो कुछ बीज बोए होंगे ना पहले, उसके खा आना जाया होगा। तो हाथ खींच के बोले, नहीं अब भी आपको चलना है देखना, अब भी आपको चलना है। तो गए देखने के लिए, देखता तो क्या, ऐसा पूरा खेत भरा हुआ है मोतियों से, ऐसे मोती चमक रहे हैं, बाप रे चमकदार, पूरा प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। तब नहीं हंसे, तब तुरे बिनने में लग गए तुरंत, सारे सारे मोती जो है बिन लिए पूरे, और बैलगाड़ी में बैठे बिठा के भेज दिए उसको रिटर्न गिफ्ट के रूप में। तो वो जो जगह है वो यहाँ से केवल 2-3 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 1 किलोमीटर नहीं, 0.5 किलोमीटर भी नहीं है। तो हो सकता है तो बस वहाँ से बस के अंदर ही घुमा के टर्न लेके आपको दिखा सकते हैं। उसका नाम है मोती कुंड, जहाँ पर इसके किनारे ठाकुर जी ने मोती बोकर उसके मोती बनवाए थे वहाँ पर। आगे सुनना है क्या हुआ? वो फिर वो मोती का जो गाड़ा है वो दोबारा भेज दिया ना बरसाने में। तो राधा रानी क्या किया, वो सारे मोती लिए और डबारा गांव गई। वो डबारा गांव रंग देवी का गांव है, बहुत सुंदर है, वहाँ पर गुड्डा गुड्डी का दर्शन है। तो डबारा गांव में राधा रानी ने उस मोती को बोकर हीरे उगलाए, मोती डाला, हीरों की खेती की, इसलिए उसका नाम पड़ा है रत्न कुंड। हीरों को मोतियों को बोकर रत्न का खेती किया उन्होंने। ऐसा अद्भुत नजारा है यहाँ पर, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। तो जो भी ठाकुर जी करते हैं उससे कुछ जोरदार काम राधा रानी करती है हमेशा, इधर याद रखना। इसलिए हम थोड़ा सा इस तरफ झुके हुए हैं, किधर? राधा रानी की ओर। तो सब लोगों को विनती है कि सब लोग राधा रानी का नाम लो, हरे हरे यानी क्या, राधा रानी, सबसे पहले उसको पुकारते हैं, फिर कृष्ण का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, यहाँ पर हमारी आज की यात्रा संपन्न होती है, अगली मुलाकात अगली फरवरी में होगी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल। तो हरे कृष्णा।